शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने आज सुबह मुरली में हम सब बच्चों को त्रिशूल का महत्व समझाया, मीनिंग समझाया। बाबा ने कहा जो त्रिशूल के तीन फलक होते हैं उसमें से एक फलक है आत्मा का ज्ञान, दूसरा है परमात्मा का ज्ञान और तीसरा है ड्रामा का ज्ञान। बाबा ने कहा जिसको ये तीनों बिंदु स्मृति में रहते हैं, तीन बिंदी का तिलक जिसको हमेशा लगा रहता है, वो सदा विजयी है। तो यहाँ भट्टी में हम सभी विजयी बनने आए हैं। आज शाम को भट्टी का विधिवत उद्घाटन होगा और उससे पहले हम अपनी स्थिति को इतना शक्तिशाली अभी से बना लेंगे कि हम भट्टी में जो जो बातें सुनेंगे वो सब धारण होती जाएंगी। जैसे जमीन में बीज बोया जाता है तो उससे पहले जमीन को तैयार किया जाता है, तो इस समय हम भी मन रूपी धरनी को तैयार करेंगे जिसके ऊपर ज्ञान योग के बीज बोए जाएंगे और वो इतने शक्तिशाली फल देंगे जिन्हें हम भी खाएंगे और दूसरे भी खाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे संस्कारों के परिवर्तन की, शक्तियों को धारण करने की और बाबा से योग के माध्यम से जो भी कमी कमजोरियां पुरानी बातें हैं उनको मिटाने की। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब खेतों में पानी दिया जाता है तो एक मिट्टी की नाली बनाई जाती है। उस मिट्टी की नाली में पानी बहता रहता है और पानी इतना साफ सुथरा होता है, अगर कोई चुल्लू डुबो करके पानी पीना भी चाहे तो पी सकता है। लेकिन मान लीजिए उसी साफ नाली के अंदर पांव रख करके कोई पशु या कोई मनुष्य क्रॉस कर गया तो वो जो नीचे जमी हुई मिट्टी होती है ना, वो पानी में मिल जाती है। और अब अगर हम पानी को पीना चाहें तो वो पीने लायक नहीं रहता है। फिर हमने उसको थोड़ी देर छोड़ दिया तो जो मिट्टी हिल गई थी, पानी में मिल गई थी, वो फिर से नीचे जम जाती है और पानी फिर स्वच्छ दिखने लगता है। ये हम सब देखते हैं, जानते हैं। हमारे जो संस्कार हैं कुछ इसी प्रकार से काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति शांति से बैठा अखबार पढ़ रहा है, सुबह 7 बजे से अखबार लेके बैठा, शांति से पढ़ रहा है, कोई बच्चा उसके पास आके बैठा, अपनी बातें सुना रहा है, वो बड़ी खुशी खुशी बातें सुन रहा है, खुशी खुशी उसने नाश्ता किया, उसके बाद फिर अखबार पढ़ने लगा और ऐसे करते करते 11 बज गए। 7 बजे से लेके 11 बजे तक वो व्यक्ति इतना खुशमिजाज है कि देखने वाला कहेगा ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, देखो कितना खुशमिजाज है, कितना शांति से पढ़ रहा है और कितना हंसमुख है। लेकिन जैसे ही 11 बजे اس کے ایک سبارڈینیٹ کا فون آیا آفس سے، کہتا ہے صاحب مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے، بہت ارجنٹ کام ہے، آپ کو مجھے 2 دن کی چھٹی دینی ہی پڑے گی۔ اور جیسے ہی ویکتی نے فون پہ یہ بات سنی تو اس کا چہرہ بدل گیا، ایک دم لال ہو گیا، زور زور سے بولنے لگا تم کو تو روز ہی چھٹی چاہیے، 10 دن پہلے تو تم نے چھٹی لی تھی، اب پھر چھٹی چاہیے، تم پرماننٹ چھٹی پہ چلے جاؤ نا، تم کو ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے ہو۔ تو ہم کو کیا لگتا ہے کہ 4 گھنٹے سے تو یہ ویکتی بالکل شانت تھا، اب کیا ہو گیا، اب اس کو غصہ کیوں آ گیا، اس کی زبان بدل کیوں گئی، اس کی خوشی غائب کیوں ہو گئی۔ اب فون پہ تھوڑی دیر اس نے بات کی، تھوڑی دیر من من میں بڑبڑاتا رہا، تھوڑی دیر سنکلپ بھی چلتے رہے، اور ایسے کرتے کرتے شام کو 4 بجے آپ نے دیکھا وہ آدمی پھر خوش مزاج ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کی آپس میں تلنا کیجیے، پانی کی اور اس آدمی کی۔ پانی سوچھ تھا، کسی نے پاؤں ٹکایا گندلا ہو گیا، پاؤں ٹکایا تو گندلا کیوں ہوا، کیونکہ مٹی نیچے موجود تھی لیکن جمی ہوئی تھی۔ اور یہ ویکتی 4 گھنٹہ شانتی سے بیٹھا تھا، ایک دم غصہ کیوں آیا، کیونکہ غصہ اندر میں تھا، سنسکاروں میں تھا، لیکن جیسے مٹی جمی ہوئی تھی غصہ بھی اندر جمع پڑا تھا، کسی کونے میں نسکریہ پڑا تھا۔ پاؤں رکھا، پانی ہلا، مٹی ہلی، پانی گندا ہو گیا، اور سامنے سے فون آیا تو وہ جو کونے میں دبا پڑا ہوا غصہ تھا وہ پرکٹ ہو گیا، جو نسکریہ تھا وہ سکریہ ہو گیا۔ اور جیسے پانی تھوڑی دیر گندلا رہا، پھر اس کو اپن نے نہیں ہلایا تو 2-4 گھنٹے میں پھر سوچھتا سے بہنے لگا۔ یہ آدمی بھی تھوڑی دیر غصہ کیا، بڑبڑایا، سنکلپ وکلپ چلے، اور شام کو 4 بجے آپ نے دیکھا وہ پھر خوش مزاج۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پانی کبھی بھی گندلا نہ ہو، بے شک اس میں کوئی پاؤں ٹکا ہے، اسے کوئی ہلائے، تو اپنے کو کیا کرنا پڑے گا، پانی کے نیچے جو مٹی پڑی ہے اس کو اٹھانا پڑے گا، ارتھات پکا بنانا پڑے گا، پانی کے بہنے کے استھان کو اپن پکا بنا دے، تو اس میں چاہے کوئی کچھ بھی ڈال دے، وہ ہلا لے، پھر بھی پانی گندا نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے مٹی ہٹا دی۔ اور منشیہ کے بھیتر جو سنسکار پڑے ہیں اگر وہ پوری طرح جل جائیں تو بے شک کسی کا فون آتا رہے، کوئی گھٹنا گھٹتی رہے، کوئی پرستھتی آتی رہے، لیکن جب اندر غصہ ہے ہی نہیں تو آئے گا کیسے، اور اگر اندر پڑا ہوگا تو باہر سے کوئی ادیپن آئے گا، کوئی کارن بنے گا اور وہ پرکٹ ہو جائے گا۔ تو راج یوگ کا ادیشی کیا ہے، بھٹی کا ادیشی کیا ہے، کئی بار ہم اپنی چیکنگ کرتے ہیں کہ میرے میں کوئی بھی وکار نہیں ہے، سچ مچ 10 دن ہو گئے کوئی وکار پرکٹ ہی نہیں ہوا، پر 11ویں دن پرکٹ ہو گیا، کہاں سے آیا، اندر پڑا تھا پر نسکریہ پڑا تھا، کارن ہی نہیں تھا تو پرکٹ کیسے ہوگا، باہر سے کوئی کارن بنتا، ادیپن بنتا ہے، پرکٹ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں 3 پرکار کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو کوئی کارن ہو یا نہ ہو لیکن پھر بھی ان کے سنسکار وانی میں کرم میں آتے رہتے ہیں، جیسے کوئی ویکتی بنا بات غصہ کرتا ہے، بنا بات جھوٹ بولتا ہے، بنا بات چیزیں توڑتا پھوڑتا ہے، بنا بات ہنسا کرتا ہے، تو اس کو اپن کیا کہتے ہیں، یہ آدمی ہے ہی نہیں، ये तो पागल है पागल, अरे इसके नजदीक मत चले जाना, मालूम नहीं इसको कब गुस्सा आ जाए, कभी ये तोड़फोड़ कर दे, कभी ये हिंसा कर दे। अब नॉर्मल दूसरी प्रकार का व्यक्ति वो होता है जो कारण आने पे उसका कोई संस्कार प्रकट होता है। कारण आया तो गुस्सा आया, कारण सामने आया तो लोभ आया, कारण सामने आया तो अहंकार आया, उसको हम कहते हैं साधारण मनुष्य, कलियुगी मनुष्य। लेकिन तीसरी प्रकार का मनुष्य वो है, सामने कारण आ भी गया, घटना घट भी गई, परिस्थिति आ गई, लेकिन फिर भी अपने शांति के गुण में, पवित्रता के गुण में, नम्रता के गुण में अडिग, उसको हम क्या कहेंगे? पहले वाले को कहा पागल, दूसरे को कहा साधारण कलियुगी मनुष्य, और तीसरे को क्या कहेंगे? असाधारण महामानव देवता। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम तीनों में से क्या बनना चाहते हैं? साधारण मनुष्य तो हम पहले भी थे, हम ये पढ़ाई इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम महामानव बन जाएं, देवत्व की ओर बढ़ें, परिस्थिति आए कुछ भी हो लेकिन हम अपनी सीट से ना हिले, हम अपनी कुर्सी ना छोड़े, आत्मा अपने स्वधर्म पे अडिग रहे, कुछ भी हो जाए उसको ये स्मृति रहे कि शांति मेरा धर्म है और मुझे नहीं छोड़ना, प्रेम मेरा धर्म है मुझे नहीं छोड़ना, पवित्रता मेरा धर्म है मुझे नहीं छोड़ना, चाहे सामने हजार कारण पैदा हो जाएं। मनुष्य के जो संस्कार हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो केवल 10% विजिबल है और 90% अनविजिबल है। जैसे पानी में एक शिला है, उसका उदाहरण दिया जाता है, पानी में जो बर्फ की शिला होती है ना, वो केवल 10% बाहर दिखाई देती है और 90% पानी के अंदर रहती है। तो देखने वाले को तो लगता है ये बर्फ का छोटा सा टुकड़ा है, भ्रम हो जाता है उसको, असलियत का पता नहीं पड़ता। कोई भी मनुष्य जिसको हम 24 घंटे में से केवल 2 घंटे देखते हैं, तो हमें क्या पता कि वो बाकी के 22 घंटे क्या करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ सुबह बस में सफर करके ऑफिस जाता है, 1 घंटे का सफर है, और शाम को आपके साथ ही 1 घंटे का सफर करके वापस अपने घर लौटता है। आपने उसको सुबह 1 घंटा देखा, शाम को 1 घंटा देखा। जब बस में सफर करता है शांति से बैठा रहता है तो हमको क्या लगता है, बड़ा शांति की मूर्ति है, कभी बोलता ही नहीं है, झगड़ा करना तो दूर। हमको लगता है ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, इसके साथ अपन कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं। और आप अपने परिवार में किसी के साथ उसका रिश्ता जोड़ लेते हो, जब रिश्ता जुड़ जाता है तो उसके बाद पता पड़ता है कि ये बस में 2 घंटे ही शांत रहता था बस, लेकिन घर में 22 घंटे। तो फिर हम कहते हैं अरे दिखता क्या था और देखो निकला क्या। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, नारियल का ऊपर से देख के पता नहीं पड़ता कि अंदर कैसा होगा। तो संस्कार जो गुप्त चीज है वो हमेशा प्रकट नहीं होती है, उसके प्रकट होने का भी समय कहिए या परिस्थिति कहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम अपने ऐसे नेगेटिव संस्कारों को पूरी तरह से जला डालें। अब इसके लिए हम क्या करें? बाबा ने एक मुरली में कहा था कि द्वापर युग से आप बच्चों ने एक गलती की, गलती ये की कि जब कोई भी विकार आया तो एक तो आपने उसको अपना मान लिया और दूसरा उसको नेचुरल मान लिया, उसके कारण आपने बार बार उसकी पालना की, उसको स्वीकार किया, उसको जगह दी, उसका मनन किया, उसको अप्रिशिएट किया, बार बार उसको याद किया, तो वो आपका पक्का भाती बन गया। बाबा ने कहा अगर इसकी जगह आप इतना गुणों को महत्व देते ना, बार बार गुण का स्मरण करते, चिंतन करते, लिखते, वर्णन करते, उसको अपना मानते, उसको नेचुरल समझते, तो आज इन अवगुणों की जगह वो गुण आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होते। लेकिन द्वापर युग से आपने मान लिया कि क्रोध तो नेचुरल है, लोभ तो नेचुरल है, झूठ तो नेचुरल है, देह अभिमान तो नेचुरल है, तो बाबा ने कहा कि अब इसको उल्टा करो। अब प्रतिदिन ये पाठ पक्का करो कि शांति तो नेचुरल है, प्रेम नेचुरल है, पवित्रता नेचुरल है, त्याग नेचुरल है, दया नेचुरल है, और ये मेरी अपनी चीजें हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको किसी भी कीमत पे छोड़ने वाला नहीं। जैसे हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को रोज बुखार चढ़ता है और एक व्यक्ति को नहीं, शहर के आधे लोगों को बुखार चढ़ गया, तो क्या हम ये मानेंगे कि बुखार चढ़ना नेचुरल है? बेशक सारे शहर में महामारी फैल जाए, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, ये महामारी है, नेचुरल नहीं। तो ऐसे ही बेशक दुनिया के सब लोगों में बुराइयां हों, सब में होने से कोई चीज ठीक थोड़े हो जाती है। बाबा ने कहा द्वापर युग से आपने देखा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपने मान लिया कि यही नेचुरल है। आपने मेजॉरिटी को देखा और नेचुरल मान लिया। तो बाबा ने कहा नेचुरल आत्मा के मूल गुण है और आपको उनको अभी पक्का करना है, तो इन मूल गुणों को और मूल शक्तियों को जितना जितना हम पक्का करेंगे, दृढ़ करेंगे, जैसे मकान बनाते हैं ना, तो जो नींव होती है, आजकल तो पिलर बनाते हैं, लेकिन पहले जब मकान बनाते थे और नींव खोदते थे तो नींव के अंदर पत्थर डालते थे और उन पत्थरों को हथौड़ी से बहुत कूटते थे, कूटते जाते थे, कहते थे जितना कूटेंगे उतना नींव मजबूत बनेगी। तो बाबा ने भी हम बच्चों को सिखाया कि ये जितने भी मूल गुण हैं ये आपकी नींव को मजबूत करेंगे, आपकी नींव अर्थात आपका मूल स्वरूप। तो आप जब भी एकांत में बैठो इन मूल गुणों को और शक्तियों को बार बार कूटो, अर्थात अपने अंदर बार बार पक्का करो, अपने आप को बार बार याद कराओ कि मैं आत्मा, कौन सी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा में कौन कौन सी शक्तियां हैं, मेरा नेचुरल स्वभाव क्या है। और एक बात बाबा ने और कही थी कि जब युद्ध के मैदान में जाना होता है तो एक वॉरियर अपने शस्त्र लेकर के जाता है, लेकिन उन शस्त्रों का अभ्यास युद्ध के मैदान में नहीं करता, अभ्यास तो पहले कहीं एकांत में बैठ के करता है, एकांत में किसी से उसका प्रशिक्षण लेता है, कहीं जंगल में, कहीं मैदान में सीखता रहता है। आपने अगर झांसी की रानी की जीवन कहानी पढ़ी हो, शिवाजी की जीवन कहानी पढ़ी हो, महाराणा प्रताप की जीवन कहानी पढ़ी हो, तो ये लोग बाल्यकाल से हर रोज जाते थे और जो इनका प्रिय शस्त्र होता था उसको चलाना सीखते थे, कई कई घंटे चलाना सीखते थे, और जब सीख करके एक्सपर्ट हो गए तब कहीं जाकर के युद्ध के मैदान में गए। तो बाबा ने भी कहा बच्चे आपका जो युद्ध का मैदान है वो कब शुरू होता है? जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा नया जन्म होता है, नींद को आधी मृत्यु कहा जाता है। सुबह उठे तो नया जन्म हुआ अर्थात हमारा बचपन है। बाबा ने कहा सुबह सुबह जब बच्चे उठते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके सामने उसके माता पिता आते हैं। तो जैसे ही हम सुबह सुबह आंख खोलते हैं हमारी आंखों के सामने हमारे माता पिता होते हैं, हमारा नया जन्म होता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था सुबह सुबह आप परम धाम से उतर करके आते हो। तो जैसे ही नया जन्म हुआ माता पिता ने बच्चे को गोदी में उठा लिया। तो जो अमृत वेले का समय है वो युद्ध का समय नहीं है, वो तो माता पिता की गोद का समय है। और उसके बाद हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो बच्चा पहले बचपन में माँ बाप की गोद में होता है, फिर स्कूल में जाता है, पढ़ाई पढ़ता है। तो हम अमृत वेले के बाद पढ़ाई पढ़ने की तैयारी करते हैं अर्थात स्टूडेंट बन जाते हैं। और जब बच्चा पढ़ लिख लेता है तो उसके बाद कर्म क्षेत्र पड़ जाता है, उसको कहते हैं युद्ध का मैदान। ऑफिस में जाएगा, दुकान पे जाएगा, घर में काम करेगा, वो कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है और वहीं पे युद्ध चलता है। माया आती है, विकृतियां आती हैं, भाव स्वभाव होता है। तो हमारा जो कर्म क्षेत्र है वो 8 बजे के बाद शुरू होता है। तो जैसे हमने बात कही कि ये जितने भी योद्धा थे इन्होंने कर्म क्षेत्र पर अर्थात युद्ध के क्षेत्र में जाने से पहले शक्तियों का अभ्यास किया, बाल्यकाल से शस्त्र चलाने सीखे और इतना सीख करके फिर युद्ध के मैदान में गए तो विजयी बने। तो हमारा बाल्यकाल कब था? हमारा बाल्यकाल अमृत वेला था, जब हम अपने माता पिता की गोद में उठे। तो हमें भी ये सारी की सारी शक्तियां उस समय अपने में भरनी है ताकि जब हम कर्म क्षेत्र पर जाएं तो एक्सपर्ट होकर के जाएं। अब अमृत वेले कोई भी शक्ति या कोई भी गुण हमको अपने में भरना है। बाबा ने बहुत सुंदर विधि हम सब बच्चों को सिखाई है। जैसे बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेले उठ करके आत्मा के पाठ को पक्का करो, केवल एक पाठ को पक्का करो और एक स्वमान को पक्का करो। जैसे हमने सुबह सुबह एक स्वमान लिया, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हम अपने स्वरूप को देखते रहे और अनुभव करते रहे कि मैं ये जो आत्मा हूँ ये मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। अमृत वेले से पहले भी आंख खुल जाए तो इस स्वमान को लेकर के हम अपने स्वरूप को देखते भी रहे। जैसे गुलाब के फूल को हम देखते भी जाते हैं और चिंतन भी करते जाते हैं, कितना सुंदर है, कितना खुशबूदार है, कितना रॉयल है। इसी तरह से हम अपने स्वरूप को भ्रकुटी में देख भी रहे हैं और चिंतन भी कर रहे हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बेशक इसमें एक ही संकल्प में हमारा आधा घंटा निकल गया। इस आधे घंटे में क्या होगा कि हमें भ्रकुटी के बीच में रोशनी दिखने लगेगी और फिर ये चिंतन नेचुरल हो जाएगा, सारा का सारा ध्यान भ्रुकुटी में केंद्रित हो जाएगा और महसूस होने लगेगा कि बाबा की भी परम धाम से शक्तिशाली किरणें आके भ्रुकुटी में समाहित हो रही हैं और सचमुच मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये हमको स्वमान पक्का हो गया। फिर बाबा ने कहा, बच्चे जंप मार करके बाबा के पास आकर के बैठ जाओ। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, क्योंकि हम श्रेष्ठ आत्मा तो हैं ही, शक्तिशाली आत्मा का अनुभव तो हो ही गया, तो हमने संकल्प किया और जो आत्मा स्वमान में टिकी हुई है वो एक संकल्प के साथ कहीं भी पहुंच सकती है। तो परम धाम में जाकर के हम बाबा के सामने उपस्थित हो गए। निराकार सर्वशक्तिवान ज्योति स्वरूप ज्योति पुंज बाबा हमारे सामने है और मैं श्रेष्ठ आत्मा बाबा के सामने हूँ। अब कई भाई बहन क्या करते हैं, इतना कर लेते हैं, उसके बाद जैसे बाबा ने कहा मांगना नहीं है, क्यों नहीं मांगना, क्योंकि आप मालिक हो। कोई मालिक खजाने के सामने खड़ा हो जाए और हाथ जोड़ के कहता रहे इतने हीरे दे दो, इतने मोती दे दो, खजाने में कोई मालिक है ही नहीं, खजाना तो खुला पड़ा है, लेकिन वो मालिक हाथ जोड़ के कह रहा है कि इतने हीरे दे दो, इतने मोती दे दो, बेशक कई घंटे गुजर जाएं उसकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। कौन सुनवाई करे, मालिक तो खुद है, खजाने के सामने खड़ा है और कहता है इतने हीरे दे दो, इतने मोती दे दो, कौन देगा, देने वाला कोई है ही नहीं। मालिक को क्या करना पड़ेगा, हाथ बढ़ा करके हीरे मोती उठाने पड़ेंगे, खुद ही तो मालिक है। तो परम धाम में पहुंच करके बाबा शक्ति दे दो, पवित्रता की शक्ति दे दो, शांति की शक्ति दे दो, कौन देगा, वहां कोई देने वाला है ही नहीं। सारे खजाने बाबा ने कहा, जब बच्चे अमृत वेले उठते हैं और मैं बच्चों को गोदी में लेता हूँ तो पहला पहला वरदान देता हूँ, बालक सो मालिक भाव। तो मैंने मालिक बना दिया और मालिक बना करके मैं निश्चिंत हो गया, तुम मालिक हो, मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारे लिए हैं, जो शक्ति चाहिए, जिस समय चाहिए, जितनी चाहिए उठाओ और यूज करो। तो मैं मालिक बनकर के परम धाम जाऊं और वहां जो बाबा और बाबा की शक्तियां हैं मालिक बने से उनको अपने में भरूं, मुझे वहां मालिक बन के जाना है, मैं मालिक हूं, बालक भी हूं और मालिक भी हूं। अब आप देखिए, भिखारी मांगता है, उसके हाथ में तो फिर भी कोई, वो कहेगा बाबूजी 100 रुपए दे दो, तो बाबूजी 100 नहीं तो कम से कम 10 तो दे ही देगा। लेकिन अगर मालिक खड़ा होकर के मांगे उसे तो 10 भी नहीं मिलने वाले, उसकी हालत तो भिखारी से भी गई गुजरी हो जाएगी। इसलिए हमको कुछ भी मांगना नहीं है, मांगने का संकल्प नहीं करना है, हमको उठाना है, हमको लेना है, हमको यूज करना है। और यूज करने की विधि क्या है, यूज करने की विधि है बाबा के सम्मुख खड़े हो जाओ, बाबा के स्वरूप को भीतर के नेत्र से देखो और उस स्वरूप में से प्रवाहित होती हुई शक्तियों को देखो और उन शक्ति की किरणों को अपने अंदर अर्थात आत्मा के अंदर भरता हुआ देखो, महसूस करो। इस दृश्य को बाबा से शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं, जैसे ज्वालामुखी में से ज्वाला निकलती रहती है निरंतर निकलती रहती है, कोई उसके नजदीक जाएगा अपने आप गर्मी लगेगी उसको। समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, कोई नजदीक जाएगा ऑटोमेटिक ठंडक लगेगी उसको। ये थोड़ी कहेगा समुद्र दो लहर दे दे, चार लहर दे दे कि ठंडक दे दे, उसको तो खड़े होना है वहां पे। कोई बाहर खुले में जाएगा, सूर्य की गर्मी उसे चाहिए, बॉडी ठंडी हो गई, वो चाहता है मेरी बॉडी गर्म हो जाए। सूर्य की किरणें पड़ेंगी, सिर गर्म होगा, फिर पूरी बॉडी गर्म होगी, कहेगा वाह देखो 5 मिनट में 10 मिनट में मैं गर्म हो गया। महसूसता आती है, मांगता थोड़ी है सूर्य एक किरण दे दे, दूसरी किरण दे दे, थोड़ा गर्म कर दे। सामने खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद सूर्य अपना काम आपे करेगा। तो मैं आत्मा मालिक और बालक बाबा के सामने पहुंच गए और बाबा की किरणें निरंतर प्रवाहमान है। 24 घंटे में कोई घड़ी ऐसी नहीं आती जब बाबा की किरणों का प्रवाह रुकता हो। इसलिए बाबा के आगे शब्द लगता है सर्व, सर्व शक्तिवान, ऑल माइटी अथॉरिटी। केवल माइटी नहीं, ऑल माइटी अथॉरिटी। तो ऑल माइट, ऑल माइटी से ही मिलेंगी, ऑल द टाइम मिलेंगी। जैसे हम कहते हैं एटीएम, एनी टाइम मनी, ऐसे हम ये भी कह सकते हैं एटीपी, एनी टाइम पावर। अब बाबा से किसी भी समय पावर ले सकते हैं, लेकिन विधि चाहिए। तो विधि क्या है? हम बाबा के सम्मुख उपस्थित हुए, संकल्प किया और वही वाली शक्ति हम में उतरनी शुरू हो गई। शक्तियां तो बहुत सारी हैं, गुण भी बहुत सारे हैं। हमें क्या चाहिए? क्योंकि कर्म क्षेत्र पे हमें इन भिन्न भिन्न चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है, कभी पानी चाहिए, कभी चाय चाहिए, कभी दूध चाहिए, कभी भोजन चाहिए, ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए। 24 घंटे में हम एक जैसी चीज तो नहीं खा पी सकते। इसी तरह से आत्मा के पालन पोषण के लिए अलग अलग चीजें चाहिए। कभी कोई गुण चाहिए, नम्रता चाहिए, कभी साहस चाहिए, कभी निर्भयता चाहिए, कभी पवित्रता चाहिए, कभी यूनिटी चाहिए, कभी प्योरिटी चाहिए, कभी हर्षित मुक्ता चाहिए। अलग अलग चीजें, अलग अलग गुण आत्मा का पोषण करते हैं। तो मुझे कौन सी गुण की जरूरत है, कौन सी शक्ति की जरूरत है? कर्म क्षेत्र पे रहते हमें घड़ी घड़ी अलग अलग गुणों की जरूरत पड़ती है। इसलिए बाबा ने हमें अलग अलग नाम बताए। बाबा ने हमें 8 शक्तियों के नाम बताए। शक्तियां तो बहुत सारी, किसी चीज को चलाना भी एक शक्ति है, किसी पर्टिकुलर बात के लिए मन में चिंतन पैदा करना ये भी एक शक्ति है। चिंतन चल ही नहीं रहा, विचार चल ही नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा? जिसको आज बाबा ने कहा मनन शक्ति, तो मनन करना भी एक शक्ति है। और अगर मन बहुत ज्यादा चल रहा है तो चलते हुए मन को रोकना भी एक शक्ति, किसी बात को याद करना वो भी एक शक्ति है, इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है। आपको कोई नंबर याद करना है, कोई रखी हुई चीज याद करनी है, किसी व्यक्ति की कही हुई बात याद करनी है, या पढ़ने वाले बच्चे को कोई अपना स्कूल का पाठ याद करना है, ऑफिसर को अपनी कोई फाइल याद करनी है, याद करना भी एक शक्ति है। और अगर कोई बिना बात, बिना जरूरत बात याद आती है तो उसको भूलना भी एक शक्ति है। किसी चीज को मोड़ देना वो भी एक शक्ति है। और किसी चीज का पूरी तरह परिवर्तन कर देना वो भी एक शक्ति है। किसी को अपना बनाना, अपनत्व प्रकट करना, ये भी एक गुण है। तो स्नेह देना, शांति, नम्रता, ये शक्तियां भी हैं और गुण भी हैं। अब हमको परखना है कि इस समय मुझे किस गुण की जरूरत है और किस शक्ति की जरूरत है। जैसे बाबा ने हम बच्चों को कहा, सबसे पहले हम कहते हैं सहन शक्ति, जो बाबा ने हमें शक्तियों का चार्ट बना करके दिया है। तो सहन शक्ति की कहां जरूरत पड़ती है और हमको कितना सहन करना है, कहां तक सहन करना है, सहन शक्ति कब कामयाब है। सहन शक्ति तब कामयाब है जब मैं अपने स्वमान में स्थित हूं। जैसे सामने वाला वार कर रहा है और शरीर बहुत कमजोर है तो क्या करना चाहिए, सामने से हट जाना चाहिए क्योंकि एक बार को भी सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन शरीर में बहुत ताकत है और सामने से वार आ रहा है तो उस वार को शरीर सहन कर सकता है। ये तो हुई शारीरिक शक्ति की बात। मानसिक शक्ति में जब हम अपने स्वमान में स्थित, मैं कैसी आत्मा हूं जो बाबा ने मुझे स्वमान दिए, मैं देव आत्मा हूं, पूजनीय आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं, मैं अपनी सीट पे स्थित हूं और सामने से वार आ रहा है ग्लानी का तो मेरे पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि मेरी सीट इतनी मजबूत है। तो बेशक लोग कहेंगे देखो कितनी सहन शक्ति है, लेकिन हमको लगेगा हमने क्या सहन किया, हम तो अपने स्वरूप में टिके पड़े, मैं तो हूं ही महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा। तो जैसे कहते हैं कि जैसे बाबा ने कहा माया आएगी, टक्कर खाएगी और टकरा करके वापस चली जाएगी, उसको लगेगा कि यहां मेरा जोर नहीं चलता। लेकिन हम फेल कब हो जाते हैं, जब हम अपने स्वमान में टिके ही नहीं है, अपने को साधारण समझ रहे हैं और सामने से वार आ गया ग्लानी का, इसने ये किया, ये ऐसा है या इसमें ये बुराई है। तो चूंकि दीवार मजबूत थी ही नहीं, स्वमान में टिके हुए थे ही नहीं और सामने से वार आ गया तो क्या हुआ, वार खाते ही सहन शक्ति चली गई। तो हमको देखना है कि मुझे सहन करना है तो मेरी स्थिति कैसी है, सामने खड़ा रहूं या मैं हट जाऊं। और बाबा ने तो ये भी कहा है कि सहन नहीं करते लेकिन आप ओवरकम करते हो, जो शक्तिशाली चीज होती है वो टक्कर नहीं खाती, वो ऊपर से गुजर जाती है। तो सहन शक्ति तब आती है जब हम अपने स्वरूप में टिके। हमें सहन नहीं करना, उसका पुरुषार्थ नहीं करना, हमको अपने स्वरूप को दृढ़ बनाने का पुरुषार्थ करना है, अपनी सीट को पकड़ के रखने का पुरुषार्थ करना है, सामना करने की समाने की शक्ति का बाती है। अगर हम स्वरूप में टिके हुए नहीं है और हमने चलो बात को सहन कर भी लिया लेकिन हम उसको समा नहीं पाएंगे, अंदर ही अंदर चिंतन चलता रहेगा, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, ये बहुत खराब है, मैं तो आगे से इसके सामने ही नहीं जाऊंगा, इससे तो डीलिंग ही नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मजबूरी में सहन किया था, ताकत तो थी नहीं और अब उस सहन किए हुए की प्रतिक्रिया अंदर ही अंदर हलचल मचा रही है। तो बाबा ने कहा था जब अंदर हलचल होती है तो आपका जमा का खाता नहीं होता, वो लीकेज हो जाती है। तो समाने का मतलब क्या है, जिसको बाबा ने आज कहा तीन बिंदी, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं और जो बीत गया उसको ड्रामा की पॉइंट से खत्म करना है। तो बाबा ने कहा कोई बच्चा एक बिंदी लगाता है, कोई दो बिंदी लगाता है और कोई तीन लगाता है। तो जो तीन बिंदी लगाता है वो विजयी है। तो सहन किया, उसके बाद बिंदी लगा दी, ड्रामा की पॉइंट से हम विजयी बन गई। सहन किया, बिंदी नहीं लगाई, तो अंदर ही अंदर घुमड़ता रहा, समाने की शक्ति खत्म हो गई। समाने की शक्ति का अर्थ है कि जो विचार मुझे नहीं चाहिए, जिसकी मुझे जरूरत नहीं, जिसकी जिसका कोई बेनिफिट नहीं, वो अंदर ही अंदर ना घूमड़े। जैसे हम कहते हैं कि जो चीज हमारे शरीर के अनुकूल नहीं, हमें भूख नहीं, वो हमको नहीं खानी। तो समाने की शक्ति का अर्थ ये है कि वो विचार हमको अंदर में नहीं लाना। अब जैसे मान लीजिए एक महीने के बाद हमको कहीं जाना है और हम यहां बैठे बैठे खुश हो रहे हैं, हम ऐसे जाएंगे, फिर हम ये देखेंगे, फिर हम ये करेंगे, ये भी समाने की शक्ति नहीं। आप अपनी खुशी को समा के रखो ना, क्योंकि आप एक महीने वाली बात को अभी खुश हो जाओगे उस बात से, तो अब जो प्रेजेंट में आपके सामने दृश्य है उसकी खुशी कब लोगे? उस खुशी को समाओ। अच्छा, एक महीने बाद आपको कोई डिफिकल्ट काम करना है, उसके लिए हम अभी से गमगीन हो गए, वो आएगा फिर ये पूछेगा, फिर ये मेरी तो फाइल तैयार ही नहीं है, फिर क्या होगा, उसको समाओ। नहीं तो इस समय जो सामने सीन है उसका फायदा कैसे लेंगे? अच्छा, एक महीने पीछे कुछ हुआ था, उसकी बात याद आ रही, आइदर गुड और बैड, उसको भी समाओ, फिनिश करो। तो समाने की शक्ति का अर्थ है कि आप ना आगे जाओ ना पीछे जाओ, लेकिन इस समय जो हो रहा है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करो। बाकी बातें आपको मालूम भी हैं, आप जानते भी हो, लेकिन क्या हम जानते हैं उन सारी चीजों को मन में रखे और घुमाते रहेंगे? जैसे मान लीजिए सुबह सुबह हम नाश्ता कर रहे हैं, लगभग नाश्ता कर चुके हैं और कोई बहुत बढ़िया चीज ले आता है, भाई ये भी खाओ, तो हम क्या करते हैं? इसको संभाल के रख दो, दोपहर में खा लेंगे, ऐसे ही करते हैं ना। और एक अलमारी में उसको रख करके और आराम से दूसरे काम में लग जाते हैं, ऐसे थोड़े कि वो आई तो हम उसके ऊपर मंडराते ही रहते हैं। मालूम है ये 6 घंटे के बाद काम आएगी, तो 6 घंटे के लिए संभाल के रख दी चीज को, 6 घंटे के लिए संभाल के रख दिया। कोई चीजें ऐसी हैं जिनको हफ्ते के लिए भी संभाल के रख देते हैं, 1 हफ्ते बाद काम आएगी। तो बातें भी तो ऐसी ही होती है ना, महीने बाद काम आएगी, इसको संभाल के रखो, तब तक अभी से आप उसको लेके क्यों बैठ गए? अभी से अगर आपने उस चीज को खा लिया, आपका हाजमा खराब होगा, नाश्ते का आनंद भी गया, और दोपहर में खाते तो उस समय ज्यादा आनंद आता। तो जो चीज महीने बाद 15 दिन बाद जो विचार करना है, उसको हम अभी से क्यों लेके बैठ गए? दूसरा क्या समाना है, हमने किसी व्यक्ति की कोई बुराई देखी, देख ली, हम जानते हैं है, लेकिन हम उसके ऊपर चिंतन क्यों चला रहे हैं? जैसे डॉक्टर क्या करता है, किसी को कोई फोड़ा या कुछ देखता है तो चिंतन थोड़े करता है, इसको फोड़ा हो गया, इसको फोड़ा हो गया, उसको मलम पट्टी लगा करके उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही किसी की कोई बात, कोई कमी दिखी और हम उसके चिंतन में चले गए या उसको देख के दुखी हो गए, तो ये समाने की शक्ति नहीं। हमने देखा और अगर हमारे में शक्ति है तो हमने उसको सुधारने की कोशिश की शुभ भावना से, अगर नहीं है तो इग्नोर किया और मन में सोचा कि जो इसके लिए निमित्त है उसको बताएंगे, वो ठीक करेगा। तो जितना हमारे में समाने की शक्ति होगी उतने संकल्प कम जाया जाएंगे। हम अपने संकल्पों को कंट्रोल कर पाएंगे, जो चाहेंगे वही संकल्प उठाएंगे, संकल्पों के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा था जो यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनेगा, स्वराज्य माना अपने विचारों के ऊपर मालिक बना, वो भविष्य में राजा बनेगा। तो मुझे मेरे संकल्पों के ऊपर पूरा कंट्रोल है, अभी ये उठ नहीं सकता, इसको उठना ही नहीं चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं। जैसे हमें अपने घर की चीजों पे कंट्रोल होता है, अब ये पैसा यहाँ खर्च नहीं होना चाहिए, जरूरत ही नहीं है, ये पैसा यहाँ नहीं खर्च होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए, इस चीज की 6 महीने बाद जरूरत है, 6 महीने बाद पैसा खर्च करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अपने पैसे को मुट्ठी में रखते, 1 रुपया भी जाया नहीं जाने देते। इसी तरह हम अपने संकल्पों को भी पकड़ के बैठे हैं, अर्थात नियंत्रण में है। अब इसकी जरूरत नहीं, अब ये नहीं उठेगा, अब इसकी जरूरत नहीं। तो जैसे हम धन को बचाते हैं, ऐसे हम अपनी संकल्प शक्ति को बचाएंगे। इसका नाम है समाने की शक्ति। संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी, हम संकल्पों के धनी बन जाएंगे। और जब हम संकल्पों के धनी बन जाते हैं तो हमारे लिए सब काम इजी हो जाता है, चाहे राजयोग करना, चाहे बाबा से रू रिहान करना, क्योंकि इसमें भी तो संकल्प ही लगते हैं। अगर संकल्प पहले ही जाया चले गए तो बाबा के लिए कहां से संकल्प लाएंगे, थे वो तो हमने गंवा दिए, संकल्प शक्ति तो गंवा दी। इसलिए हमें मालिक बन के रहना है। उसके बाद जैसे बाबा ने हमें बताया परखने की शक्ति, अब इसका सीधा कनेक्शन परखने की शक्ति के साथ भी है। कोई भी चीज स्पष्ट कब दिखाई देती, जब पानी हिल रहा है, मालूम नहीं पड़ता उसके नीचे क्या पड़ा हुआ है, लेकिन जब पानी बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल स्थिर है, तो मालूम पड़ जाता है कि इसके नीचे क्या है, कोई शीप है या कोई अमूल्य चीज नीचे गिर गई है, सब कुछ दिख जाता है। तो परखने की शक्ति का बात ही है, जब हम कम से कम संकल्प चलाते हैं, संकल्पों को बचाते हैं और अंदर के दर्पण को स्वच्छ रखते हैं। जैसे हमारी कार है, कार के सामने ग्लास लगा रहता, कांच लगा रहता, हम चलते ही हैं, चलने से पहले उसको कपड़ा मारते हैं, एक साइड में लगा रहता है, एक सामने लगा रहता है, तो पीछे से जो व्हीकल आ रहा है वो अपने को दिखता है, उसको कपड़ा मारा नहीं, धूल जमी पड़ी है तो दिखता नहीं। तो परखने की शक्ति का मतलब क्या है कि अंदर का दर्पण बिल्कुल स्वच्छ है, फालतू बातों की, फालतू स्मृतियों की धूल पड़ी हुई नहीं है, तो हम परख पाएंगे ये राइट है, ये रॉन्ग है, बाबा ने ऐसे बोला है, ऐसे करना है, ये ठीक नहीं है, इसका रिजल्ट गलत निकलेगा, ये श्रीमत विरुद्ध है, ये अल्पकाल का सुख देगी, दीर्घ काल में इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, हमने वो कपड़ा मार लिया, दुर्घटना नहीं होगी, स्पष्ट दिखेगा, हमारी स्पीड भी अच्छी होगी। तो जो व्यर्थ की धूल पड़ी है वो हटाई, तो चीज को परख लिया। और जब हम ठीक से परख लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर डिसीजन लेंगे। एक सेकंड में डिसीजन क्यों नहीं लिया जाता, करूं ना करूं, एक मन कहता है करूं, एक मन कहता है नहीं करूं। जैसे उठाया और रख दिया, चला और फिर पीछे हट गया, तो कब मंजिल आएगी। तो जब परखेंगे तो निर्णय ठीक होगा। और जब व्यक्ति ठीक निर्णय ले लेता है उसके बाद वो सामना करता है। सामना करने में भी बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया, किसका सामना करना है, दो बातें होती हैं, एक है परिस्थिति, एक है व्यक्ति। किसका सामना करेंगे, व्यक्ति का सामना करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, व्यक्ति का सामना करेंगे तो शत्रुता हो जाएगी, व्यक्ति का सामना करेंगे तो वो तो हमारा ही भाई है, बाबा ने हमको कहा कि आपका शत्रु कोई भी नहीं है, अगर हम उसका नुकसान करेंगे व्यक्ति का तो हम अपने भाई का ही नुकसान करेंगे, तो किसका सामना करना? सामना परिस्थिति का करना है। जैसे एक डॉक्टर है, उसके सामने एक रोगी आया, किसका सामना करता है? अगर वो रोगी का सामना करने लगे, उसकी दुकान पे कोई जाएगा, किसका सामना करता है? रोगी को बहुत प्यार करता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन सामना किसका करता है? उसके रोग का। तो एक है व्यक्ति और एक है व्यक्ति का दुर्गुण, हमको सामना किसका करना? व्यक्ति का सामना नहीं, लेकिन व्यक्ति के दुर्गुण का सामना करना। कोई कहेगा कि दुर्गुण भी तो व्यक्ति के अंदर घुस के ही आया ना, तो रोग भी तो रोगी के अंदर घुस के ही आता है ना। लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर क्या करेगा? दुर्गुण को अर्थात रोग को मारेगा। तो एक एक्सपर्ट राजयोगी का उद्देश्य क्या है? वो व्यक्ति से घृणा नहीं करेगा, व्यक्ति को सुरक्षित रखेगा और उसके भीतर घुसे हुए दुर्गुण को खत्म करेगा। अब जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सुबह सुबह बच्चा कहता है कि मैं तो स्कूल जाऊंगा ही नहीं, बस्ता पटक देता है। अब आपको किसका सामना करना है? बच्चे का सामना करना है, उसको थप्पड़ मारो, गुस्सा करो, जबरदस्ती हाथ पकड़ करके बस में धकेल दो, क्या फायदा इसका? बच्चा रोएगा, स्कूल में भी रोता रहेगा, रोता रोता आएगा, वो भी गुस्सा करना सीखेगा। तो क्या करना है? ये एक परिस्थिति आई है कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, मुझे इस परिस्थिति को चेक करना है, इसको देखना है कि ये आई क्यों, इसे स्कूल में कोई धमकाता है, पीटता है, मारता है, इसको वहां भूख लगती है, इसके दोस्त अच्छे नहीं है, या इसको घर में कोई चीज का आकर्षण है, ये क्या मैं कारण ढूंढूं? डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन नहीं लगाता, कारण ढूंढता है, इसको खांसी क्यों आ रही है, इसको बुखार बार बार क्यों चढ़ता है, कौन सी क्वालिटी का है? पहले कहेगा पूरा डायग्नोस कराओ, खून चेक कराओ, फलानी चीज चेक कराओ, चेक करने के बाद कदम उठाता है। तो पहले मुझे भी तो चेक करना है ना कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। फिर मुझे कारण का पता पड़ा, फिर मैंने उस कारण का निवारण किया तो ये बच्चा आराम से आने जाने लगा। तो जीवन में परिस्थितियां बहुत आती हैं, बीमारी की परिस्थिति आती है, किसी का विरोध होता है, क्यों विरोध करता है हमारा, कोई सामना करता है, कोई क्रिटिसिज्म करता है, कोई बिना बात इल्जाम लगाता है और हमने उसको बुरा मान लिया। अरे ये तो एक रोग है जो उसके भीतर प्रवेश हुआ है, हमको इस रोग को निकाल देना है, तो व्यक्ति बहुत अच्छा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा गुण हमें बाबा से चाहिए, किस परिस्थिति में हम वही संकल्प लेकर के, गुण या शक्ति का संकल्प लेकर के बाबा के पास जाएंगे, लेकिन जब परिस्थिति आ गई तब बाबा के पास नहीं जाएंगे। जैसे किसी का बहुत बड़ा ऑपरेशन आ गया और वो कहता है मैं जरा धन कमा के ले आऊं, किसी को मकान बनाना है, कोई बेच रहा है, अच्छा मकान खरीदूंगा, फिर जरा धन कमा के ले आऊं। अरे धन तो पहले से कमा के रखना पड़ता है ना, तो शक्ति तो पहले से जमा करके रखनी पड़ती है ना। हम भट्टी में क्यों आए? इसीलिए आए कि हम इन शक्तियों को जमा करें, इतना जमा करें, या हमको और तो कहीं खर्च तो करनी नहीं है। लौकिक में तो खर्च होती रहती है, जमा भी होती रहती है, लेकिन अब हम ऐसी जगह आए हैं जहां हमको कोई शक्ति खर्च नहीं करनी है, केवल जमाई जमा, सुबह से रात तक जमाई जमा। तुम इतनी जमा करके जाएं, स्टॉक इतना भर के जाएं कि वहां जब भी जरूरत पड़े तो यूज कर सके। तो संकल्प का बटन दबाएंगे, जैसे कोई मशीन होती है उसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, आपको गर्म पानी चाहिए तो गर्म वाला बटन दबाव आना शुरू हो गया। तो विज्ञान की दुनिया में, साइंस की दुनिया में है बटन, और साइलेंस की दुनिया में है संकल्प। साइलेंस अर्थात परम धाम में जाके आपने संकल्प किया, मुझे पवित्रता का बल चाहिए, मैं पवित्रता का मास्टर सागर हूं। आपने अपने खजाने में से पवित्रता की शक्ति उठा ली, आप मालिक हैं, सामने खजाना है, पवित्रता की शक्ति उठाई हाथ से नहीं संकल्प से, मैं परम पवित्र पिता का बच्चा मास्टर पवित्रता का सागर हूं। और महसूसता आई, पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा में समाने लगी, मैं प्रेम के सागर का बच्चा मास्टर प्रेम स्वरूप हूं। अपने प्रेम की शक्ति उठाई और भरनी चालू हो गई, मैं क्षमा के सागर का बच्चा मास्टर क्षमाशील हूं। आपने क्षमा की शक्ति अपना ही खजाना है, आपको संकल्प से उठानी है, उठाई और भरनी चालू हो गई। तो आप एक एक शक्ति को महसूस कीजिए, अलग अलग गुण को, अलग अलग शक्ति को टाइम दीजिए, 15 मिनट एक शक्ति, 10 मिनट कोई शक्ति, आधा घंटा कोई शक्ति, एकांत में बैठिए, जब भी टाइम मिले आप ये शक्ति अपने में भरिए। और इनका आपस में कनेक्शन है, शांति की शक्ति आएगी तो क्षमा की शक्ति भी आ जाएगी। देखने में आता है जब अंदर शांति नहीं होती है तब क्षमा भी नहीं कर पाते, इसलिए इंटरकनेक्टेड भी है, इन पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक को भी अगर हम फुल भर लेंगे तो वो अपनी बाकी सखियों को बुला लेगी। एक बार दो मिनट
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको
चर्चा कर रहे थे कि हमें जब भी समय मिले हमें अपने अंदर ये शक्तियां भरते जाना है। यहाँ बाबा के घर में हमें बहुत एकांत का स्थान भी मिला हुआ है, शांतिवन तो बहुत बड़ा है, कहीं भी बैठ के हम एकांत में अभ्यास कर सकते हैं। और ये लक्ष्य रखें कि इस भट्टी को हमें यादगार भट्टी बनाना है, ऐसी अनुभूति करके जाएं जो अनुभूति जीवन भर हमें मदद करती रहे। बाबा के पास अनुभूतियों का खजाना है, बाबा ने हमें वरदानों से झोली भरने के लिए बुलाया है, तो हम इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे, अपना एक सेकंड भी जाया नहीं करेंगे। हर घड़ी हर श्वास जमा का खाता बढ़ाएंगे और बाबा की आशीर्वाद और दुआओं का पात्र बनेंगे। तो अभी हम आधा घंटा इन्हीं शक्तियों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।
तेरे बिन्नु प्यारे बाबा।